ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जयैधवलङ्गते णावुरियसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ऊपर लिखी गई है, जिनके कर्ता हैं गुंदर भट्टारक और यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी भगवान के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। अब हम प्रथम पुस्तक में ये जो पहला अधिकार है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। मूल कषाय पाहुड़ या पेज दोष प्रावृत से गुणधर भट्टारक ने ये जो कषाय पाहुड़ की रचना की है उसमें विषय संबंधी 180 गाथाएं हैं, और उन 180 गाथाओं में 15 अर्थाधिकार किस तरह है उसको उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। हम 167 पृष्ठ पर आए, 166 पेज पर, जो 166 पृष्ठ पर जो अर्थाधिकारों के नाम है उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। ये टेबल में दिखे लिखे ना, 1 से 5 प्रारंभ के हमने कल देखे थे। हाँ, कौन से? पहला पेज दोष विहत्ति, स्थिति विहत्ति, अनुभाग विहत्ति, चौथे के नाम संबंधी 2-3 मत उन्होंने बताए थे, तो उसमें हम वो तो हाँ प्रदेश विभक्ति, जीणाजीण और सित्यंतिक, हाँ ये चौथे का नाम है। पांचवे का नाम बंधक, बंधक कहो या बंध और संक्रम दोनों उसमें अंतर्भूत है। ये छठे का यहाँ नाम लिखा है वेदक, उपयोग, फिर चतुस्थान और व्यंजन, 9 हो गए ना, फिर दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपणा, 11 हो गए, संयमासंयम लब्धिस्थान और संयम लब्धिस्थान, ये 2। यानी उसको चारित्र लब्धि कहा, चारित्र लब्धि कहो या संयम लब्धि कहो एक ही बात है, 13 हो गए, फिर 14वां चारित्र मोह उपशामना और 15वां चारित्र मोह क्षपणा, ये 15 अर्थाधिकार है। उसमें जो कोई अन्य, पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन जो लिखी ना विषय की संबंधी 12 गाथाएं तो वो लिखी, 2 गाथाओं में तो नाम लिखे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, और फिर बाद में भी भाष्य गाथाएं कुछ आने वाली है, तो ये सबकी टोटल मिलकर 233 गाथाएं होती है। अब हम यहाँ पढ़ते 167 पृष्ठ पर, ये जो कोष्टक है उसको पढ़ेंगे। 233 गाथाएं जयधवला में जिस क्रम से निबद्ध है उसका कोष्टक इस प्रकार है। संबंध ज्ञापक 12 गाथाएं, संबंध ज्ञापक यानी वो आने वाले विषय क्या है, उनका संबंध कौन सी गाथा में कहां क्या है वो बताया है इन गाथाओं में। फिर अर्थाधिकारों के नाम निर्देश करने वाली 2 गाथाएं जो अभी हमने पढ़ी थी, यानी 13वीं और 14वीं नंबर की। फिर अद्धा परिमाण निर्देश संबंधी 6 गाथाएं, प्रारंभ के 5 अर्थाधिकार संबंधी 3 गाथाएं, संक्रम वृत्ति संबंधी 35 गाथाएं और शेष 10 अधिकार संबंधी 175 गाथा, इस तरह से 233 टोटल हो जाए। शंका, कषाय प्रावृत से संबंध रखने वाली 233 गाथाओं के रहते हुए गुणधर भट्टारक ने गहा सदे असीदे इस प्रकार की प्रतिज्ञा किस लिए की है, ऐसे 233 उन्होंने स्वयं रचित रचना की है तो 180 संख्या क्यों कही उन्होंने, लिखा ना गाहा सदे, गाहा ने गाथा, सदैव ने शत, असीदे ने अस्सी, 180 गाथा है, ऐसा क्यों कहा? समाधान, 15 अर्थाधिकारों में से इस अर्थाधिकार में इतनी इतनी गाथाएं निबद्ध है। इस प्रकार का ज्ञान कराने के लिए गुणधर भट्टारक ने गाहा सदे असीदे इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है, किंतु 12 संबंध गाथाएं 15 अर्थाधिकारों में से एक भी अर्थाधिकार में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कितनी गाथाएं किस अर्थाधिकार में पाई जाती है इसके प्ररूपण करने में इन 12 गाथाओं का उपयोग होता है। अभी हमारे आजकल की बात देखेंगे अभी हम, तभी इस पुस्तक में शुरू में वो जो इंडेक्स लिखा है अनुक्रमणिका, और पुस्तक के जो पेज नंबर देना चालू करते हैं तो जहाँ से विषय शुरू होता है वहाँ से पेज नंबर दिया जाता है, और उसके पहले हेडिंग दिया जाता है, फिर वो प्राक कथन किया जाता है, उपोद्घात होता है, प्रस्तावना होती है, जो भूमिका होती है, जो कुछ है वो सारी बातें पहले लिखी जाती है और फिर विषय संबंधी पेज नंबर देते हैं। ऐसे यहाँ आने वाला विषय क्या है, उनकी प्रतिज्ञा आदि सभी बातें मंगलाचरण तो चूंकि उन्होंने किया नहीं है तो उसको तो विषय की गाथा में नहीं गिनाए, इसलिए उन्होंने 180 संख्या कही है। अद्ध परिमाण निर्देश में कही गई 6 गाथाएं भी 15 अर्थाधिकारों में से किसी भी अर्थाधिकार में नहीं पाई जाती है, क्योंकि अद्धा परिमाण का निर्देश 15 अर्थाधिकारों में नहीं किया गया है। उनका जो प्रमाण आदि जो है अल्पभूत जो कुछ है तो हर एक में अपने अपने में बता देंगे, वो कुछ अलग से अर्थाधिकार तो है ही नहीं है। शंका, संक्रम में कही गई 35 वृत्ति गाथाएं बंधक नामक अर्थाधिकार से प्रतिबद्ध है, इसलिए इन्हें 180 गाथाओं में सम्मिलित करके प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? हमने देखा ना बंधक में 2 भेद किए, बंध और संक्रम, तो उसी में उसको क्यों नहीं कहा? अर्थात 180 के स्थान में 215 गाथाओं की प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? समाधान, ये 35 गाथाएं 3 गाथाओं के द्वारा प्ररूपित किए गए 5 अर्थाधिकारों में से बंधक नाम के अर्थाधिकार में ही प्रतिबद्ध है, इसलिए इन 35 गाथाओं को 180 गाथाओं में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि 3 गाथाओं के द्वारा प्ररूपित अर्थाधिकारों में से एक अर्थाधिकार में ही वे 35 गाथाएं प्रतिबद्ध है, उससे संबंधित है वो। अथवा संक्रम में कही गई 35 गाथाएं बंधक अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध है, यह बात अर्थापत्ति से ज्ञात हो जाती है, अर्थापत्ति नहीं उसमें से वो अर्थ निकलता है, इसलिए ये गाथा 180 गाथाओं में सम्मिलित करके नहीं कही गई है। चूंकि 180 गाथाओं को छोड़कर संबंध, अद्धा परिमाण और संक्रम का निर्देश करने वाली शेष गाथाएं नागहस्ती आचार्य ने रची है, इसलिए गाहा सदे असीदे ऐसा कहकर नागहस्ती आचार्य ने 180 गाथाओं की प्रतिज्ञा की है, ऐसा कुछ व्याख्यानाचार्य कहते हैं। यानी किन्नी का कहना क्या है, गुणधर भट्टारक ने तो 180 ही रची और फिर बाद में नागहस्ती ने उसमें वो रख दी एडिशनल, और उन्होंने फिर गुणधर भट्टारक की 180 है ऐसा बताया, परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता। ये स्वयं वीरसेन आचार्य लिख रहे हैं, क्योंकि संबंध गाथाओं, अद्धा परिमाण का निर्देश करने वाली गाथाओं और संक्रम गाथाओं के बिना 180 गाथाएं ही गुणधर भट्टारक ने कही है। यदि ऐसा माना जाए तो गुणधर भट्टारक को अज्ञपने का प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए पूर्वोक्त अर्थ अज्ञपना ने वो कुछ समझते नहीं थे, हम कहते ना अज्ञ है अज्ञपना ने अज्ञानीपना, क्योंकि वो इतना समझते नहीं थे और नागहस्ती ने उसमें वो एडिशन कर दिया, ऐसा समझना पड़ेगा। विशेषार्थ, इस कषाय पाहुड़ में 15 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाली 180 गाथाएं तथा 12 संबंध गाथाएं अद्धा परिमाण का निर्देश करते हुए कही गई 6 गाथाएं और प्रकृति संक्रम का आश्रय लेकर कही गई 35 वृत्त गाथाएं, इस प्रकार कुल 233 गाथाएं पाई जाती हैं। इनमें से 180 गाथाएं स्वयं गुणधर भट्टारक के द्वारा रची गई है। शेष 53 गाथाओं के कर्ता के संबंध में मालूम होता है कि वीरसेन स्वामी के समय दो परंपराएं पाई जाती थी, यानी उन्हीं के समय दो मत थे, तो उसमें से उन्होंने एक का खंडन किया। एक परंपरा का कहना था कि 180 गाथाओं को छोड़कर शेष 53 गाथाएं नागहस्ती आचार्य की बनाई हुई हैं। इस परंपरा को मान लेने से गाहा सदे असीदे यह प्रतिज्ञा भी सार्थक हो जाती है। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो गाहा सदे असीदे इस प्रतिज्ञा की कोई सार्थकता नहीं रह जाती। यदि शेष 53 गाथाएं भी गुणधर भट्टारक की बनाई हुई है तो गाहा सदे असीदे के स्थान में 233 गाथाओं की प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी। दूसरी परंपरा का, जो स्वयं वीरसेन स्वामी की परंपरा है, इस विषय में यह कहना है कि यद्यपि समस्त गाथाएं स्वयं गुणधर आचार्य की बनाई हुई है, फिर भी उनके गाहा सदे असीदे इस प्रतिज्ञा के करने का कारण यह है कि इस कषाय पाहुड़ के 15 अर्थाधिकारों के प्रतिपाद्य विषय ने उसमें जो प्रतिपादन किया है, विषय जिस संबंधी प्रतिपादन है उसको कहते हैं प्रतिपाद्य, नहीं नहीं जिसकी पूजा करनी वो पूज्य, वंदना करनी वो वंदनीय, जो करने योग्य वो कर्तव्य, ऐसे यहाँ प्रतिपाद्य शब्द तैयार हुआ है ना। प्रतिपाद्य विषय से 180 गाथाएं ही संबंध रखती है, शेष गाथाएं नहीं। शेष गाथाओं में 12 तो संबंध गाथाएं हैं, जिनमें 15 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाली गाथाओं की सूची मात्र दी गई है। सूची यानी लिस्ट, वो इंडेक्स बनाते हैं, अनुक्रमणिका कहते हैं। 6 अद्धा परिमाण का निर्देश करने वाली गाथाएं हैं, जिनमें 15 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाले अद्धा परिमाण का निर्देश किया गया है। उसका जो काल कितना है आदि जो बातें हैं उसका प्रमाण बताए। 35 संक्रम वृत्ति गाथाएं हैं, जो केवल बंधक अधिकार से संबंध रखती हैं। यद्यपि 15 अर्थाधिकारों के भीतर किसी भी एक अर्थाधिकार से संबंध रखने वाले गाथाओं का या तो 180 गाथाओं में समावेश हो जाना चाहिए, या गाहा सदे असीदे इस प्रतिज्ञा को नहीं करना चाहिए था, ऐसा प्रश्न है ना। तो उसमें वो मिलाकर ज्यादा कहनी चाहिए थी। संबंध गाथाओं के बारे में तो समझ में आया, परंतु संक्रम संबंधी जो गाथा है उसको क्यों नहीं गिनाया। पर तिन्नेदा गाहाओ पंचसु अथेसु नादौवा, इस गाथांश के अनुसार गाथा में स्वयं गुणधर भट्टारक ने बताया है कि प्रारंभ के 5 अर्थाधिकारों में मूल 3 गाथाओं की ही प्रतिज्ञा की गई है, इसलिए इनका गाहा सदे असीदे इस प्रतिज्ञा में समावेश नहीं किया है। फिर भी अर्थापत्ति के बल से, यानी उसमें से जो अर्थ निकलता है उसके बल से, उसके आधार से यह समझ लेना चाहिए कि ये 35 गाथाएं उक्त 15 अर्थाधिकारों में से बंधक अर्थाधिकार से संबंध रखती है। इस प्रकार वीरसेन स्वामी के मत से यह सुनिश्चित हो जाता है कि इस कषाय पाहुड़ में आई हुई 233 मूल गाथाएं स्वयं गुणधर भट्टारक की बनाई हुई है। देखो वीरसेन स्वामी दूसरा मत भी प्रस्तुत करते हैं, और जहां उनको ठीक लगे वो स्वयं अपनी भी बात प्रस्तुत करके उसको क्यों ऐसा कहते हैं वो भी सिद्ध करते हैं, और जहां ऐसा सिद्ध करने के लिए कोई बात यानी कोई आधार नहीं है या उसमें कोई हम अपना दिमाग नहीं चला सकते, ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारे विषय आए हैं वहां लिखते, दोनों ही उपदेश आचार्यों की परंपरा से आए हैं और अभी कोई श्रुति केवली और केवली है ही नहीं है, तो जिसका हम एक बात तो एक ही सिद्ध सही होगी, दो तो सही नहीं हो सकती, फिर भी उसका निर्णय हम नहीं दे सकते, ऐसा वो बहुत बार धवला में भी उन्होंने लिखा है, परंतु यहाँ कौन सी बात सही है वो स्वयं यहाँ लिखती है। इस प्रकार गुणधर भट्टारक के उपदेशानुसार 15 अर्थाधिकारों का प्ररूपण करके अब यति वृषभ आचार्य के उपदेशानुसार, ये यति वृषभ कौन थे, हाँ चूर्णी सूत्र का, यानी तेजोदोष प्रावृत पर जिन्होंने, यानी कषाय पाहुड़ पर जिन्होंने चूर्णी सूत्र लिखे उनकी बात अभी, उनका सूत्र बताएंगे। 15 अर्थाधिकारों को बतलाते हैं, ऊपर जो साइन है ये चूर्णी सूत्रों की, अत्था ही आरो पन्नारस विहो। अर्थाधिकार के 15 भेद हैं, विध यानी विहो यानी विध प्रकार के, 15 प्रकार के हैं इस सूत्र में। अन्य प्रकार से कहते हैं इतने पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। अध्याहार करना यानी क्या करना, मराठी में हम कहते हैं अध्यावृत समझना, हाँ समावेश करना यानी वो समझ लेना, वो है ऐसा नहीं, टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड एग्जैक्ट शब्द है उसका अध्याहार। समझ लेना क्यों, पहले बता चुके हैं देखो। अन्य प्रकार से कहते कहा ना, अभी अन्य प्रकार से कहते ये बात, उसकी पुनरावृत्ति यहां भी समझना। देखो तत्वार सूत्र में बहुत जगह ऐसी बात आई है, एक गाथा में कोई एक विषय बता दिया तो वे शब्द हर गाथा में रिपीट नहीं करेंगे, पाहुड़ यानी प्रावृत, प्रावृत जो वस्तु के जो अर्थ अधिकार है उसको प्रावृत कहते हैं। हाँ वो पाहुड़ भेट वो तो अलग अर्थ है, परंतु वो श्रुत का एक भेद है ना पाहुड़, प्रावृत जिसको कहते हैं। देखो ये जो हमने पहले देखा था इसको अध्याहार इसका करना चाहिए, ये जो बात लिखी उन्होंने तो पहले भी वो अत्था ही आरो पन्नारस भी हो निकालना, 136 पेज। वहां भी चूर्णी सूत्र ही है जो 113 नीचे लिखा है ना, लास्ट लाइन नीचे से दूसरी लाइन देखो, फुटनोट के ऊपर नीचे से दूसरी लाइन जहां 113 लिखा उसके ऊपर क्या लिखा है, अर्थाधिकार 15 प्रकार का है, और यहाँ क्या लिखा है अर्थाधिकार के 15 भेद है। वही आप यदि प्राकृत देखो अत्थायारो पन्नारस भी हो, और यहाँ भी लिखा है अत्थायारो पन्नारस भी हो, अलग पद्धति से अभी ये कहेंगे। तो यहाँ जो लिखा है अन्य प्रकार से कहते हैं यह शब्द समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक ही सूत्र दोबारा थोड़े लिखेंगे वे। अब शंका, गुणधर भट्टारक के द्वारा कहे गए 15 अर्थाधिकारों के रहते हुए उन्हीं 15 अर्थाधिकारों का अन्य प्रकार से प्ररूपण करने वाले यति वृषभाचार्य गुणधर भट्टारक के दोष दिखाने वाले कैसे नहीं होते वो क्या अपने को बहुत स्याना समझते थे कि ऐसा ही इसका कहना है, नहीं हो सकता है। क्योंकि दोष भी लगावे और सम्यक दृष्टि भी रहे, इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है। देखो शंकाकार भी कितना जिसको कहते ना समाधान, अब यहाँ पूर्वोक्त शंका का समाधान करते हैं। अन्य प्रकार से 15 अर्थाधिकारों का प्रतिपादन करते हुए भी यति वृषभ आचार्य गुणधर भट्टारक के दोष प्रकट करने वाले नहीं है, क्योंकि गुणधर भट्टारक के द्वारा कहे गए अर्थाधिकारों का प्रतिषेध नहीं करके, यदि उनका प्रतिषेध करते दोष बताते तो ठीक, उनके अभिप्रायांतर का यानी उन्हीं गुणधर भट्टारक का अन्य क्या अभिप्राय हो सकता है, या उसमें से और क्या अर्थ निकल सकता है। जैसे हम देखते हैं ना बहुत से ग्रंथों में चूली का भी लिखी जाती है, तो क्या मूल ग्रंथ में नहीं बात, तो उसको भी दोबारा और एम्फोसिस करना है, शिष्यों को समझाना भी है, परिशिष्ट भी क्यों लिखते हैं ऐसी चूल्हे का, ये तो धवला में तो हमने देखी पूरी छठी पुस्तक तो चूल्हे का ही चूल्हे का है, पूर्व में आए हुए कितने विषय उस चूल्हे का में समझाए, जो नहीं आए वो भी उसमें, और जो गर्भित होते हैं और जो मूल पुस्तक में नहीं बताया है उसको भी वहां बताया जाता है, क्योंकि जो ऑलरेडी बताया है उसमें से वो अर्थ निकलता है। तो उसमें से वो अर्थ निकालने की जिसके पास बुद्धि है इतनी कुशाग्र, वो ऐसा खोल कर बताएंगे। जैसे इसमें कोई चार्ट नहीं होता और हम थोड़ी बुद्धि लगा के चार्ट बनाएंगे, तो क्या हमने मूल को थोड़ा ही उड़ा दिया? मूल बात को ही अधिक विस्तृत करके शिष्यों को समझाने के लिए ये बात की जाती है। तो उनके अभिप्रायांतर का यतिर्षभ आचार्य ने प्ररूपण किया है। गुणधर भट्टारक ने 15 अर्थाधिकारों की दिशा मात्र दिखलाई है, अतएव गुणधर भट्टारक के मुख से निकले हुए अर्थाधिकार ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार उस नियमाभाव को, नियम के अभाव को, नियमाभाव है ना, यानी ऐसा कोई होल एंड सोल रूल नहीं है कि वो उन्होंने ये नाम बताया तो यही होना चाहिए, उसको दिखलाते हुए यति वृषभाचार्य ने 15 अर्थाधिकार अन्य प्रकार से कहे हैं। इसलिए यति वृषभाचार्य गुणधर भट्टारक के दोष प्रकट करने वाले नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य समझना चाहिए। अब ये चूर्णी सूत्र की बात, हम चूर्णी सूत्र पढ़ेंगे ऊपर। तम जहां तम जहने वे इस प्रकार है, पेज 2 से 1, वे 15 अर्थाधिकार आगे लिखे अनुसार हैं। उनमें से पहला पेज 2 अर्थाधिकार है, यति वृषभ आचार्य के द्वारा कहे गए 15 अर्थाधिकारों में पहला पेज 2 अर्थाधिकार है शंका। पेज 2 से इस पद में एक वचन का निर्देश कैसे बनता है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि पेज और दोष इन दोनों में भी समाहार द्वंद्व समास की अपेक्षा, समाहरण एक में उनको अंतर्भूत कर दिया ना, और द्वंद्व समास दो का मिलकर एक शब्द हो गया, एकत्व पाया जाता है, अतः पेज 2 से इस पद में एक वचन निर्देश बन जाता है। यानी पेज और दोष ये दो होने चाहिए, उनको एक क्यों गिनाया है, तो कहते द्वंद्व समास वहां बन जाता है। ये व्याकरण की बात है। शंका, पेज 2 पहला अर्थाधिकार है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, क्योंकि यति वृषभ आचार्य ने पेज 2 से इस पद के आगे एक का अंक स्थापित किया है, वो स्वयं उन्होंने लिखा है, एक लिखा है वहां पर, अभी हमने पढ़ा था ना पेज 2 के बाद एक करके। इससे प्रतीत होता है कि पेज 2 यह पहला अर्थाधिकार है। अब दो नंबर ये आगे का सूत्र, ऊपर जो लिखा है विहत्ति ठिरी अनुभागे च दो, स्थिति विभक्ति, विभक्ति एक शब्द लिखा ना, और विभक्ति में स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति, तो उन्होंने अक्षर कम करने के लिए विहत्ति एक बार लिखा और वो स्थिति और अनुभाग ऐसा बता दिया। स्थिति विभक्ति अनुभाग विभक्ति तथा सूत्र में आए हुए च पद से समुच्चय किए गए, यानी उसमें जो गर्भित किए हैं, हम कहते ना एक्सेट्रा जैसे वगैरह कहते हैं, तो उसमें कौन कौन है, तो प्रकृति विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, झिनाझिन प्रदेश और स्थित्यंतिक प्रदेश, इन सबको मिलाकर दूसरा अधिकार होता है, अर्थाधिकार होता है, जो हमने वो चौथे में देखा था, यति वृषभाचार्य ने यहाँ दूसरे में बताया। यानी स्थिति अनुभाग प्रकृति और प्रदेश, और वो प्रदेश के साथ ही झिनाझिन प्रदेश और स्थित्यंतिक प्रदेश ले लिया। प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, झिनाझिन प्रदेश और स्थित्यंतिक प्रदेश, इन सबको ग्रहण करके दूसरा अर्थाधिकार होता है। ये यति वृषभाचार्य ने अलग पद्धति से इनका वर्गीकरण किया है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, क्योंकि यति वृषभाचार्य ने विहत्ति ठिदि अनुभागे च इस सूत्र के आगे दो का अंक स्थापित किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रकृति विभक्ति आदि को मिलाकर दूसरा अर्थाधिकार होता है। शंका, प्रकृति विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, जीनाजीन प्रदेश और सित्यंतिक प्रदेश, इनका सूत्र में उपदेश नहीं दिया है। फिर इनको दूसरे अर्थाधिकार में कैसे ग्रहण किया जा सकता है, यानी उनका नाम तो नहीं लिखा है, तो यहाँ उसको क्यों लिख रहे हो? उसका समाधान नहीं, क्योंकि प्रकृति विभक्ति आदि के बिना स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति नहीं बन सकती। हम प्रकृति कहेंगे, उसके नंबर ऑफ परमाणु प्रदेश कहेंगे, तो ही उसमें स्थिति अनुभाग घटित होगा, इसलिए उनका यहाँ ग्रहण हो जाता है। अथवा अनुक्त का समुच्चय करने के लिए, अनुक्त ने जो बताया नहीं है और फिर भी वो वहाँ है, ये दिखाने के लिए आए हुए च शब्द से उन प्रकृति विभक्ति आदि का दूसरे अर्थाधिकार में ग्रहण हो जाता है, यानी वो भी विषय इसी में है। शंका, विहत्तिष्ठिति अनुभागे इस पद में एक वचन का निर्देश कैसे बन जाता है? वो पेज दोष में तो बता दिया, अभी यहाँ कैसे हो जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि एक कर्मस्कंध रूप आधार की अपेक्षा, ये स्थिति अनुभाग आदि का आधार एक कर्मस्कंध है, उसी में स्थिति बताएंगे, उसी के अनुभाग बताएंगे, उसी के प्रदेश प्रकृति कहेंगे, तो वो एक है, उस अपेक्षा से एक वचन हो सकता है। अथवा एक जीव रूप आधार की अपेक्षा, एक तो कर्मस्कंध को आधार कहा, या वो जीव के साथ बंधे है, तो उस एक जीव के आधार की अपेक्षा, अथवा विभक्ति सामान्य की अपेक्षा। एक वचन कैसे घटित होता है? एक कर्मस्कंध है इसलिए, या एक जीव के साथ बंधे हुए इसलिए, या तीसरी, विभक्ति शब्द कॉमन है सब में, विभक्ति कहकर ठिदी अनुभागे आदि लिख दिया, तो हम विभक्ति कहकर प्रदेश प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सब घटित कर सकते उसमें, इसलिए उस अपेक्षा भी एक, यानी एक वचन घटित होता है, उसकी अपेक्षा स्थिति विभक्ति आदि में एकत्व वो हो गया पाया जाता है। इसलिए विहत्ति ठिदी अनुभागे च इस पद में एक वचन का निर्देश बन जाता है, यानी उसको भी एक वचन से कह सकते हैं। विशेषार्थ, यद्यपि विहत्ति ठिदी अनुभागे इस पद में स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति इन दो का निर्देश किया है, निर्देश किया है, क्या कथन किया है, इसलिए यहाँ एक वचन का निर्देश न करके द्विवचन का निर्देश करना चाहिए था, यह इसी शंकाकार की शंका है। फिर भी द्विवचन का निर्देश नहीं करने का कारण यह है कि देखो, यहाँ तो है तो आध्यात्मिक ग्रंथ, आगम के ग्रंथ, फिर भी सूत्रों की जब वो चर्चा चलती है तो व्याकरण संबंधी भी प्रश्न पूछेंगे, उसका लिंग भेद वचन भेद होता है, तो कौन उसको स्वीकार नहीं करता मालूम है ना? नयों में भूल गए, शब्द नए है, समभी रूढ़ नए है, एवं भूत है, तो उनमें यदि ऐसा एक वचन दो विचन के बदले एक वचन आया, या उसके एक साथ नपुसक लिंगी या स्त्रीलिंगी पुरुष लिंगी शब्द एक साथ बता दिए, तो भी उसका वो स्वीकार नहीं है। जैसे स्त्री के लिए शब्द बताना है तो दारा भी कहेंगे, कलत्र भी कहेंगे, तो कुछ दोष है कि नहीं है? आपको मालूम है कलत्र शब्द का अर्थ क्या मालूम है? स्त्री के लिए, पत्नी के लिए कलत्र कहते हैं, मराठी में नहीं है, यह हमारे कुटुंब है। कलत्र का अर्थ कुटुंब नहीं होता, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री, भार्या, परंतु कलत्र ये शब्द नपुसक लिंगी है, इसलिए वो स्त्रीलिंगी शब्दों के साथ उसको अगर रखेंगे अन्य, हाँ, तो वो उस नए से उसका स्वीकार नहीं है, अन्यत्र उसका स्वीकार है, यानी लिटरेचर में साहित्य में उसका स्वीकार है, उसको यूज भी करेंगे हम, उसका वापर होगा वाक्यों में, परंतु एक साथ वो स्त्रीलिंगी और नपुंसक लिंगी शब्द एक साथ, हाँ, उस नए को स्वीकार नहीं है, ये बात है वो। अब इसीलिए यहाँ इतनी चर्चा कर रहे हैं एक वचन द्विवचन की। अभी आजकल का इतना सारा आसान कर दिया ना, आसान नहीं है, बुद्धि नहीं लगाना चाहते तो सुधारना के नाम पर वो पहले वाले सभी जो व्याकरण संबंधी नियम थे, ह्रस्व दीर्घ संबंधी नियम थे, उसको सबको उड़ा दिया, जैसे संस्कृत शब्द से मूल में जो मति है, भक्ति है, शक्ति है, बुद्धि है, वो ई ह्रस्व होता था उसमें। अब मराठी में सबको दीर्घ कर दिया, आदि शक्ति वगैरह सब इकारांत शब्द सभी दीर्घ वाले कर दिए। और ये तो मानते हैं हमने सुधारना की है। अब यहाँ ये विभक्ति शब्द आया है ना, मूल तो विभक्ति ह्रस्व है, मराठी वाले दीर्घ करेंगे अभी वर्तमान शुद्ध लेखन के आधार से। देखो इन दोनों विभक्तियों का आधार एक वचन क्यों यूज किया है, एक वचन क्यों यहाँ लिया, उसका निर्देश क्यों नहीं किया? तो कहते द्विवचन का निर्देश नहीं करने का कारण यह है कि इन दोनों विभक्तियों का आधार एक कर्मस्कंध है या एक जीव है, अथवा विभक्ति सामान्य की अपेक्षा। विभक्ति सामान्य का अर्थ क्या होता है? जैसे अभी हम विभक्ति को दूर रखते हैं, ज्ञान के कितने भेद है पर्याय की अपेक्षा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। हम कहेंगे ज्ञान सामान्य की अपेक्षा वो एक है, समझ में? इसको सामान्य, यहाँ ऐसा कहा विभक्ति के इतने प्रकार है, उसमें से विभक्ति सामान्य की अपेक्षा हम उसको एक गिनेंगे, इसलिए एक वचन का निर्देश किया है। इसलिए दोनों विभक्तियां एक है। कौन सी दोनों की बात चल रही थी अपनी यहाँ पर? स्थिति और अनुभाग की, मूल सूत्र में जिसको लिया है। अतः व्यत्ति ठिदि अनुभागे इस पद में एक वचन का निर्देश न करने में कोई बाधा नहीं आती। न करने में बाधा नहीं आती, अच्छा करने में बाधा नहीं आती चाहिए था। तीसरी लाइन, हाँ हाँ बराबर है, ये शब्द दो बार निगेटिव आए हो, विशेषार्थ का ही तीसरा लाइन 172 पृष्ठ पर तीसरी लाइन। आप कहाँ पर है? अभी जो हमने पढ़ा था व्यत्ति ठिदि अनुभागे इस पद में एक वचन का निर्देश किया है ना उन्होंने, करने में कोई बाधा नहीं आती, ऐसा होना चाहिए था, न शब्द नहीं चाहिए था। ऊपर तो नहीं है, तो उनकी विशेषार्थ की बात है, वो न निकालना वहां से, क्योंकि अभी तक हमने तो उसकी चर्चा की ना, एक वचन का निर्देश किया है फिर भी वो दोष नहीं है, वहां बाधा नहीं आती उसमें, वो न निकाल देना। पेंसिल से करो चाहिए तो, एक वचन का निर्देश करने में कोई बाधा नहीं आती, यानी एक वचन का निर्देश किया है वो ठीक है। अब आगे का सूत्र चूर्णी सूत्र ऊपर, बंधगेत्ति बंधोच तीन संकमोच चार, ये अर्थाधिकारों की संख्याएं बता रहे हैं चूर्णी सूत्रकार। गाथा में आए हुए बंधक इस पद से बंध नाम का तीसरा अर्थाधिकार लिया गया है तीन, तथा संक्रम नाम का चौथा अर्थाधिकार लिया गया है चार। गुणधर भट्टारक ने अलग पद्धति से उसका वर्गीकरण किया था, अब यहाँ यति ऋषभाचार्य अन्य पद्धति से अर्थाधिकार, तो उतने वे सब सभी जो विषय है वे तो वे ही रहेंगे क्योंकि गाथा ही उनकी है, फिर भी इन्होंने उसको अलग पद्धति से क्लासिफिकेशन किया उसका। प्रवचन सार में भी देखते हैं हम, अमृतचंद्राचार्य ने उसको ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और चरणानियोग संबंधी चूलिका, ज्ञान ज्ञेय और चरणानियोग, तो जैसे आचार्य ने उसका अलग पद्धति से उसी को नाम दिए हैं, और जिन जहाँ तक कहाँ से शुरू करना क्या उसमें थोड़ा भेद है, तो ऐसा नहीं कि वे जानते नहीं थे, मैं कुछ अलग जान रहा हूँ, उसमें से अन्य भी अर्थ कैसे निकलता है उसको बताया जाता है। अभी ये जो जय धोला की 154 नंबर का बंधक, यह पद, पद यानी शब्द, कर्तृ निर्देश नहीं है, हमने न क जब लगाते तो करने वाला ऐसा उसमें से अर्थ निकलता है। हम कहते वाहक चालक, क लगाता है ना तो क करने वाला ऐसा उसमें से, ज्ञायक उसमें अर्थ निकलता है वैसा, तो ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लेना। बंधक में बंद करने वाला यानी वो जीव या कर्म ऐसी उसकी बात नहीं है। किंतु बंधनम बंधा, बंधन के बदले बंधक यानी बंधन के लिए बंधक शब्द आया है, तो बंधनम बंधा इस प्रकार भाव निर्देश है, वो भाव को बताने वाला क शब्द वहां आया है। जैसे बंध के बदले हम बंधन भी कहते हैं, उसी अर्थ में बंधक लिया है। अथवा बध्यते यह सह बंध, इस प्रकार कर्म निर्देश है। शंका, ये कर्म निर्देश और कर्तृ निर्देश समझ में आया? करता है ने उस, जैसे राम ने आम खाया, हम स्कूल में सीखते थे ना, तो राम को क्या कहेंगे? उस वाक्य का कर्ता कहेंगे, और उस वाक्य का कर्म क्या है? आम। ऐसे यहाँ है, जो बंधता है वह बंध है, ऐसा लेना यहाँ पर। ये बांधने वाले जीव को बंधक कहेंगे, वह बात यहाँ नहीं लेनी है, तो इसलिए कहते हैं ये कर्म निर्देश। यदि यहाँ कर्तृ निर्देश नहीं है तो बंधक शब्द में ककार कैसे सुनाई पड़ता है? तो यहाँ क क्यों लगाया, सुनाई पड़ता है ने? वहां क्या क क्यों यूज किया है? समाधान नहीं, हाँ तभी तो सुनते ही थे ना, ज्यादा तो सुनने की मुख्यता थी तभी नहीं, क्योंकि बंध एव बंधक, बंध ही बंधक है। इस प्रकार यहाँ पर स्वार्थ में, स्व अर्थ में, स्वार्थ है ने सेल्फिशनेस नहीं लेना यहाँ पर यहाँ पर स्वार्थ में ककार की उपलब्धि हो जाती है। यह बंध वह बंध दो प्रकार का है, अकर्म बंध और कर्म बंध, यानी बंध में दो प्रकार लिए हैं। उनमें से अकर्म रूप से स्थित कार्मण स्कंध का और जीव प्रदेशों का मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग रूप कारणों के द्वारा, कषाय में शो आया क्या बराबर? दिख नहीं रहा बराबर। क्या कहते हैं, जो पहले अकर्म रूप है ऐसे जो कारमाण वर्गणा है उसको यहाँ कारमाण स्कंद कहा, वो भी स्कंद ही है ना, उसका और जीव प्रदेशों का ये परस्पर में संबंध क्यों होगा? तो कहते मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग रूप कारणों के द्वारा, कारणों में कौन सा कारण है? ये उपादान है कि निमित्त है? हाँ शोभाबेन, अपने यहाँ बहुत चर्चा हुई ना उपादान निमित्त की, तो ये कौन सा कारण है? मिथ्यात्व असंयम ये निमित्त है कि ये उपादान है? हाँ, प्रश्न मैंने पूछा, मिथ्यात्व असंयम और कषाय और योग जो है वो निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? अब बोलो अश्विन भाई, उपादान है। आप कहते हैं निमित्त कारण, हाँ चलो अच्छा है ना, दो पार्टी एक ही घर में है। निमित्त के पार्टी में और कौन है, उपादान के पार्टी में कौन है, बोलो लक्ष्मी बेन। आप क्या कहते हैं, ये कौन से कार्य की बात चल रही है? सुनो अभी यहाँ कौन सा कारण, कार्य क्या हो रहा है? कर्म स्कंद का जीव में परस्पर संबंध हो रहा है। हाँ तो ये जो कर्म स्कंद बन रहा है, बंधने वालों की बात है, वो कार्य उसमें हो रहा है, तो हम हाँ ये निमित्त हो गए ना सारे। हाँ अभी जीव की अपेक्षा, जीव क्या कर रहा है वो ने? हाँ वो पुराने कर्मों के उदय को कारण कहेंगे जीव के मिथ्यात्व के लिए, तो मिथ्यात्व को उपादान कहेंगे। यह उसकी बात कहाँ हो रही है, यह बंधने की बात चल रही ना। जो कारमान स्कंद था, जो अकर्म रूप था, वो कर्म रूप क्यों हो रहा है? तो मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग के कारण हो रहा है, तो अभी क्या है, ये निमित्त है ना। इसके द्वारा जो परस्पर में संबंध होता है वह अकर्म बंध है, तथा मति ज्ञानावरण रूप कर्म स्कंधों को श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण रूप से परिणमा कर उनका जो जीव प्रदेशों के साथ संबंध होता है वह कर्म बंध है। देखो, अकर्म में से जो बंध हुआ है वो अकर्म बंध है, और जो ऑलरेडी कर्म रूप से था वो अन्य प्रकृति रूप संक्रमित हो गया, उसको क्या कहेंगे, कर्म बंध। पहले तो कारमाण वर्गणा थी, और कारमाण वर्गणा वो कर्म रूप होकर जीव के प्रदेशों में बंध गई, अकर्म रूप में से कर्म रूप हो गई, यानी अकर्म रूप से में से बंध हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, अकर्म बंध। अब जो पांच हो ही ज्ञानावरण बंधे, तो उसमें से एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप का वो संक्रमण हर समय वो चलता ही रहता है उसका, तो मति ज्ञानावरण के परमाणु श्रुत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण आदि रूप से परिणमित हो गए, संक्रमित हुए, टोटल के टोटल नहीं हो जाते, उसमें से कुछ ना कुछ परमाणु इधर उधर चलते रहते, तो उसको क्या कहेंगे, कर्म बंध। उनमें से यहां बंध शब्द से अकर्म बंध का ग्रहण किया है, यानी वो भी बात की, यहां किस बंध की बात कर रहे हैं, तो अकर्म बंध की बात यहां बता रहे हैं। यह तीसरा अर्थाधिकार है। हाँ, संक्रमित होते हैं उसको संक्रम कहेंगे, उसको कर्म बंध कहेंगे, उसको चौथे में लिया है। अब यहां अलग टाइप से वर्गीकरण चल रहा है ना, पहले जो हमने देखा था बंधक इस अधिकार में दो भेद बताए थे, अब यहाँ तीसरे नंबर पर बंध को रखा है और चौथे नंबर पर वो संक्रम को कहेंगे, क्या है? अभी तो कर्मस्कंध है ने, अभी जो देखो ना, अभी यहाँ एक जीव है, हम जीव है, और यहाँ कारमाण वर्गणाएं भी उसी आकाश के प्रदेश में और वो स्थित है, परंतु उसका जीव का संबंध नहीं है। अभी वो एक क्षेत्र में है, परंतु उसको भी वैसा संबंध नहीं है जैसा कर्म के साथ, कर्म के साथ देखो कारमाण वर्गणा भी उसी प्रदेशों में है, और कर्म भी उसका कुछ जगह छोड़कर कोई अन्य से बाहर से नहीं खींचे चले आते, वहीं पर है वो, कर्म अकर्म रूप थे वो कर्म रूप हो गए। जैसे पहले हम बच्चे थे ना, जब शुरू में समझाते क्या, ये आना कर्मों का है ना, बाहर से कहीं आते खींचे चले आते, ऐसी पद्धति थी ना, वो पद्धति सिखाने की, जैसे नाव का भी उदाहरण देते थे, वो नाव के तल में एक छेद हो गया है, उसमें से पानी आता है, तो बाहर से अंदर आता है तो उसको तो आश्रव कहा, और अंदर से फेंक देता है, तो वो उदाहरण इतना पक्का हो गया कि आश्रव क्या होता है, तो वो नाव में पानी आना आश्रव है। इन्हें जीव को और कर्म को तो भूल ही जाते थे। उदाहरण में ही वो नाव पर ही आश्रय और नाव पर ही निर्जरा। तो ये संक्रम एक कर्म और अकर्म समझ में ना, कारमाण वर्गणा थी उनका कर्म रूप ज्ञानावरण दर्शन आदि कर्म रूप परिणमित हो गए, तो उसको अकर्म बंध कहा, और ऑलरेडी जो कर्म रूप हो गए हैं और जीव के साथ उनका संबंध हो गया है, संश्लेष संबंध जिसको कहते हैं, ये आपके फैन है ना, वो क्या नाम है उसका, उनका फोन आया था संश्लेष संबंध के बारे में, तो ये कर्म रूप है वो अन्य कर्म रूप हो जाता है, अन्य प्रकृति रूप, जैसे ज्ञानावरण दर्शनारूप उस रूप नहीं होगा, अन्य प्रकृति रूप नहीं होगा, परंतु सजातीय प्रकृति में उनका संक्रमण होता है। हाँ, मति ज्ञानावरण है वो श्रुत ज्ञानावरण रूप हो जाएंगे कुछ परमाणु, पूरा का पूरा तो संक्रमित कभी नहीं होगा। अब आगे बढ़े, हाँ, सामान्य से जब कर्म बंध हुआ ऐसा कहेंगे, तो कारमाण वर्गणा में से जो कर्म बनता है उसी को हम कर्म का बंध हुआ, जिसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का वर्णन करते हैं, तो उस बंध की बात करते हैं। अकर्म रूप से था वो कर्म रूप हो गया, पुद्गल परमाणु कारमाण वर्गणा की अवस्था में थे तब उसको कारमाण वर्गणा कहते थे, कर्म नहीं कहते थे। अब ये कर्म रूप हो गए स्वयं अपनी योग्यता से, उसमें कुछ विशेषता हो गई ना, अवस्था बदल गई उनकी, तब उसको हम कर्म कहेंगे। और फिर जीव के निमित्त थे इसलिए कहेंगे ये इस जीव के कर्म हो गए। अब उनका जो प्रदेशों का भी इकट्ठा रहना है, और जब उदय हो गए तो जीव के साथ उसका निमित्तपना बनता है, उसी क्षेत्र में रहने वाले अन्य जीव के साथ तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम देखते हैं एक निगोद शरीर में अनंत जीव, और हर एक का अपना अपना जो कारमाण शरीर जो है वो भिन्न भिन्न है। औदारिक शरीर भले एक है, क्योंकि वहां से मरकर कोई मनुष्य में उत्पन्न होता है, कोई फिर निगोद में उत्पन्न होता है, कोई अन्य एक इंद्रिय में या अन्य द्विंद्रिय आदि में चला जाता है, अपना अपना हर एक का अलग अलग है। यह तीसरा अर्थाधिकार है, इसी का विशेषार्थ बताते हैं। मिथ्यात्व आदि कारणों से जो नूतन बंध होता है उसे यहाँ अकर्म बंध, ये नवीन बंध जो कहें ना, नूतन है नवीन बंध होता है, और संक्रम को कर्म बंध कहा है। आगम में पुद्गल के जो 23 भेद कहे हैं, याद है 23 भेद, पहला भेद का नाम तो मालूम होगा, 23 भेद में से पहला भेद कौन सा है? हाँ वर्गणा, हाँ बरोबर है, आप क्यों अनुवर्गणा, एक सिंगल परमाणु को वहां अनुवर्गणा कहा है। फिर द्व्यणुक वर्गणा, त्रिअणुक वर्गणा, चतुर, फिर असंख्यात अणुओं की वर्गणा, अनंत अणुओं की वर्गणा, फिर वो आहार वर्गणा का नंबर आएगा, बहुत बाद में आता है, पहले अनंतान। ये जो सारे ना आहार आहार वर्गणा जिसको कहते हैं, 23 वर्गणा में से 5 ही वर्गणा जीव के द्वारा ग्रहण योग्य है, अन्य तो ग्रहण ही नहीं करता जीव, वो तो इस विश्व में है परंतु उसको किस रूप में ग्रहण करता है, या तो आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, जो कुछ 5 वर्गणाएं हैं उन रूप से ग्रहण करता है। अन्य जो वर्गणाएं हैं, अभी आहार वर्गणा के बाद जो वर्गणा है ना, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए जाएंगे, आहार वर्गणा में भी मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे भेद है। अब जो आहार वर्गणा का उत्कृष्ट भेद है उसके बाद जो है उसको कहते हैं अग्रहण वर्गणा। वर्गणाएं तो है परंतु जीव उसको किसी भी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है, ना शरीर रूप से ना कर्म रूप से। फिर जो आगे की वर्गणा आएगी उसका नंबर लगे, उसमें भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के एक एक परमाणु से बढ़ते हुए वर्गणा के भेद है। फिर अग्रहण वर्गणा, ऐसे 5 ग्रहण योग्य वर्गणा के बीच में अंतराल में 4 अग्रहण वर्गणाएं होगी, उसमें और भी भेद बहुत है, सांतर निरंतर ध्रुव शून्य वगैरह वगैरह। तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि जो 23 भेद कहे, ध्रुव नहीं कहा, ध्रुव शून्य वर्गणा कहा है। देखो ध्रुव शून्य वर्गणा क्या कहलाती है, परमाणु के एक परमाणु से लेकर महास्कंध तक जो अलग अलग जो कितने परमाणु मिलकर एक स्कंध हुआ उसको वहां वर्गणा कहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसी एक वर्गणा है कि जिसको ध्रुव शून्य वर्गणा कहते हैं। ध्रुव शून्य वर्गणा का अर्थ क्या है, इस विश्व में ऐसी कोई वर्गणा अस्तित्व में ही नहीं है। मान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक बढ़ते हुए परमाणु, एक परमाणु का स्कंद, स्कंद है नहीं वो वर्गणा कहलाएगा, 2 का 3 का 4 का, 100 तक तो है। फिर आगे हम कहेंगे ना 101 102, हम नंबरिंग तो करेंगे क्योंकि हमें आगे के भी भेद बताने, तो हम कहेंगे ऐसे 100 से लेकर 101 से लेकर 199 हम गिनेंगे, और फिर 200 से लेकर और आगे की वर्गणा का नाम लिखेंगे, और बीच वाली जो एक वर्गणा है उसका एक नाम दिया हमने, अभी यहाँ ध्रुव शून्य वर्गणा कहते हैं, या शून्य वर्गणा को अभी के लिए। तो शून्य वर्गणा क्यों कहा, तो इतने परमाणुओं का स्कंद रूप ऐसी कोई वर्गणा ही एग्जिस्टिंग नहीं है, ऐसी 4 आती है। तो 23 वर्गणा के नाम तो है परंतु 19 ही वर्गणाएं ऐसी एग्जिस्टिंग है, तो उसको बीच वाले को नाम क्यों दिया, क्योंकि वो है नहीं इसलिए उसका नाम होता है। ये ध्रुव शून्य होती है। उसका पूरा एक धवला का पुस्तक इसी पर हमने देखा, पूरी उसमें वर्गणा ही वर्गणा थे। पुद्गल के जो 23 भेद है वो कितने कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, बहुत विस्तार से लिया था ना। हाँ, ध्रुव शून्य है। यहाँ लिखा देखो विशेषासन में दूसरी लाइन, आगम में पुद्गल के जो 23 भेद कहे हैं उनमें कार्मण वर्गणा नामक एक स्वतंत्र भेद है। यानी इतने इतने परमाणुओं के स्कंद रूप वो अलग ही वर्गणा है, कार्मण वर्गणा। वे कार्मण वर्गणाएं ही मिथ्यात ही लगाएं, अन्य कोई परमाणु कर्म रूप नहीं होगे। कौन से होगे? कर्म योग्य होने योग्य ही होगे। तो क्या हमने मिथ्यात्व किया, असंयम किया, ये सब किया तो विश्व के सारे परमाणु उस रूप हो जाएंगे ना? अभी नहीं। तो आप कहेंगे नहीं विश्व के सारे तो नहीं, मगर जीव जिन प्रदेश में है स्थित वहां के सभी कार्मण वर्गणाएं तो अपने अपने उसमें होने चाहिए, सभी मिथ्यात्व रूप परिणत हो जाए ना। मिथ्यात्व में से जो कुछ ज्ञान आवरण दर्शन आवरण 8 कर्म रूप हो जाएगी कि नहीं सभी के सभी परमाणु? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ तो अनंत अनंत वर्गणाएं पड़ी है, उसमें से कुछ ही वर्गणा उस समय टर्न हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? भगवान का उपदेश तो असंख्या जीव सुनते हैं एक समय में, समोचरण में असंख्या जीव है ना, और कितना जीव सब समझ जाते हैं, कितने जीव समय को प्राप्त करते हैं एक ही समय में। आज जिनकी योग्यता वैसे यहां पर भी लेना, कार्मण वर्गणाएं तो इतनी पड़ी है जिनकी उस समय परिणमित होने की योग्यता है, क्योंकि निमित्त से कार्य नहीं होता है ना, निमित्त से होने लगे तो सभी के सभी टर्न हो जाए। तो एक क्या कहा, कौन से कर्म रूप हो गए? एक तो कार्मण वर्गणाएं ही होगी, और उसमें से भी अभी ये बात यहां नहीं लिखी जिनकी योग्यता है, तो वो जिनकी योग्यता जो ज्ञानावरण रूप होने योग्य वो ज्ञानावरण रूप ही होगी, उसमें से भी वो 8 भेद अलग अलग है, वर्गणाओं में भी भेद है। तो वे कार्मण वर्गणाएं ही मिथ्यात्व आदि के निमित्त से अकर्मपने का त्याग कर स्वयं आकृष्ट होकर कर्म रूप परिणत होती है। उसी को आकृष्ट होना कह दिया है। आत्मा के साथ इनका एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध होने के पहले इन्हें कर्म संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती है, उसको कर्म नहीं कह सकते हम, कार्मण वर्गणा कहेंगे। और जब कर्म हो जाएगा तब उसको अभी कार्मण वर्गणा नहीं कहेंगे, उसको कर्म कहेंगे। अतः ये अंतः दिख रहा है क्या, क्या है? अतः चाहिए, अतः ने इसलिए नूतन बंध को यहाँ अकर्म बंध कहा है, और बंध होने के क्षण से लेकर उन्हें कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है, यानी तब उसको हम कर्म कहते हैं। अतः संक्रम के द्वारा जो पुनः प्रकृति आदि में परिवर्तन होकर, पहले कौन सी प्रकृति मती? ज्ञानावरण की, अब वो शुद्ध ज्ञानावरण रूप प्रकृति रूप परिणत होती है, उनका आत्मा से एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता है, होता है नहीं कहा, बना रहता है कहा ना, पहले से ही था पर अभी अन्य प्रकृति रूप होकर बना रहता है। परमाणु तो वही का वही है, अब उसी को हमने अन्य प्रकृति नाम दिया क्योंकि उसमें कुछ चेंज हो गई ना, उसकी स्वभाव में कोई फर्क हो गया उसके, उसे कर्मबंध कहा है। इस प्रकार अकर्मबंध और कर्मबंध में भेद समझना चाहिए। नवीन नूतन बंध ने नया बंध, नया बंध नूतन का अर्थ होता है नया, यानी जो अभी जिसको हम हमेशा बंध कहते हैं उसी की बात है। कार्मण वर्गणा कर्म रूप होना ही नया बंध है, उसी को कहा है। देखो नूतन बंध को अकर्म, जो कार्मण वर्गणा थी जो कर्म नहीं था वो कर्म हुआ, उसी को अकर्म बंध कहा। और जो हाँ अभी बंद हुआ, अभी ये जो उसमें जो संक्रमण हुआ, मति ज्ञानावरण है वो श्रुत ज्ञानावरण रूप से कुछ परमाणु टर्न हो गए तो उसको क्या कहेंगे हम, संक्रमण हुआ, उसको कर्मबंधक कहते हैं। उसको संक्रम कहो या कर्मबंधक कहो, एक ही बात है। जिसको हमेशा हम बंध कहते हैं उसको यहाँ अकर्मबंध कहा, हमेशा जिसको हम कर्मबंध हुआ, कर्म का बंध हुआ कहते हैं उसी को यहाँ अकर्मबंध कहा। वो उसी बात को यहाँ फिर दोबारा समझाए, विशेषार्थ के पहले ही लाइन में इसको बताया था, फिर अतः करके उसी बात को फिर कहा। संज्ञा ने नाम, हाँ हमें क्या कहते, पहले हम उसको क्या कहते थे, उन परमाणुओं को कारमाण वर्गणा कहते थे। अब जीव के निमित्त, वो परिणामों के निमित्त वो कर्म रूप हो गए, अब उसको क्या कहेंगे, उसी कर्मों को, उसी पुद्गल को क्या कहेंगे, कर्म संज्ञा प्राप्त हुई ना। हाँ ऐसा भी कहेंगे ये इस जीव का ये कर्म है, ये कर्म अभी इसके पास इतने कोड़ा कोड़ी सागरों से है, जीव ने इसको अभी उपशमाया है, ऐसे जो कहते हैं। तो उन्हीं परमाणुओं को अभी हम कैसा रिफर कर रहे हैं, कर्म है। शंका, बंध नाम का तीसरा अधिकार है यह कैसे जाना जाता है। समाधान, बंधो इस पद के अंत में तीन का अंक पाया जाता है, स्वयं वहां लिखा है चूर्णी सूत्रकार ने, तीन लिखा है ना, बंधो च कहकर तीन लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि बंध नाम का तीसरा अर्थाधिकार है। पूर्व में जो कर्मबंध कहे आए हैं उसी का सूत्र में संक्रम पद के द्वारा ग्रहण किया है, वह चौथा अर्थाधिकार है। क्योंकि चूर्णी सूत्र में संकमो पद के आगे चार का अंक पाया जाता है, संकमो च चार लिखा है ना सूत्र में। अब आगे का चूर्णी सूत्र, वेदयेत्ति उदयो च पांच, उदीर्णा च छह, उन्होंने उदय और उदीर्णा को अलग ले लिया। गाथा में आए हुए वेदक इस पद से उदय नाम का पांचवा अर्थाधिकार लिया गया है, पांच, तथा उदीर्णा नामक नाम का छठा अर्थाधिकार लिया गया है, छह। पहले हमने वेदक और फिर वेदक में उदय उदीर्णा चूर्णी या कषाय पाहुड़ में लिखा था, अब यहाँ अलग अलग दो अधिकार के। हाँ अभी जयधोला की जो 155 नंबर की जो टीका है, वेदय इस पद से यहाँ पर दो अर्थाधिकार लिए गए हैं, क्योंकि उदय दो प्रकार का है, कर्मोदय और अकर्मोदय। उनमें अपकर्षण के बिना जो कर्मस्कंद उदय रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं वह कर्मोदय है। अपकर्षण के बिना यानी जिनकी स्थिति पूरी हुई है, अब जो उदयावली में जो है और उदय का समय जो एक निशेक है, वर्तमान एक निशेक, उसका उदय चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उदय कर्मोदय। तथा अपकर्षण के द्वारा स्थिति रचना जो होती है, तो क्रम से वर्तमान समय से लेकर जितने सत्ता में पड़े हैं उतने निशेकों एक 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 निशेक करके वहाँ उनकी स्थिति रचना है, निशेक रचना जिसको हम कहते हैं। ऊपर के निशेकों में से कुछ परमाणु नीचे आके मिलते हैं उदय के समय में, तो उसको उदीर्णा कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है नीचे आने का, नीचे आना ऊपर जाना है, नीचे ऊपर कुछ नहीं होता है, उसकी स्थिति घट जाती है, तो अपकर्षण के द्वारा उसको अपकर्षण कहते हैं। जो कर्मस्कंध उदय रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं वह अकर्मोदय है। यहाँ उदय पद से कर्मोदय का ग्रहण किया गया है, वह पांचवा अर्थाधिकार है, क्योंकि उदय इस पद के आगे पांच का अंक पाया जाता है। उदीर्णा पद से अकर्मोदय का ग्रहण किया है। देखो अकर्मोदय यानी यहाँ वो कारमाण वर्गणा है, इसलिए वो अकर्म ऐसा नहीं समझना, उदय नहीं था, कर्मोदय एक शब्द लगाओ और उसके पीछे अ लगाना। जिस कर्म का उदय नहीं था उसका अभी उदय हो रहा है जल्दी, ऐसा अर्थ लेना। नहीं नहीं नहीं, देखो ऊपर के निषेकों में से सभी जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको तो सामान्य अपकर्षण कहते हैं, और जो उदीर्ण होकर उदयावली में और उदय के समय तक आकर खिरता है, उदय रूप होता है, हाँ उसको उदीर्णा कहेंगे, उसको उदीर्णा कहेंगे। ये छठवां अधिकार है, छ लिखा ना, क्योंकि उदीर्णा इस पद के आगे छ का अंक देखा जाता है। वेदक यह पद भी यहाँ कर्तृ निर्देश रूप नहीं है, अतः जिस प्रकार पहले बंधक पद में कर्तृ निर्देश का परिहार कराए, परिहार ने उसको रूल आउट किया, उसका खंडन किया, वह कर्तृ निर्देश नहीं है ऐसा बतलाया है, उसी प्रकार वेदक पद में भी कर्तृ निर्देश का परिहार कर लेना चाहिए। यानी वेदन का अनुभव करने, यानी अनुभव करने वाला ऐसा वेदक का अर्थ नहीं लेना, जैसे पहले हमने धवला में वेदना ऐसा लिखा था, कर्म को कहा था, वहां प्रकृति को वेदना कहा था। अथवा बंधक और वेदक ये दोनों ही निर्देश कर्तृकारक लिए गए हैं, यानी कर्तृकारक लेंगे तो क्या अर्थ लेना, तो कहते क्योंकि बंदर उदय का कर्ता जीव है और उसके साथ ये दोनों एकत्व प्राप्त, एकत्व को प्राप्त है, अतएव इनमें भी कर्तृभाव बन जाता है। पहले तो निषेध ही किया था और यहाँ कैसे बन सकता है, तो जीव की अपेक्षा वो करने वाला जीव, इस तरह से भी उसका अर्थ निकल सकता है, यहाँ वीरसेन स्वामी बता रहे। आगे का चूर्णी सूत्र ऊपर, वो जोगे च सात, उपयोग नाम का सातवां अर्थाधिकार है सात, वहां भी उपयोग सातवां ही था और छठवें में वेदक था और उसमें से यहाँ दो किए, फिर भी सात नहीं हुए, क्योंकि पहले इकट्ठा लिया ना, स्थिति और अनुभाग को इकट्ठा लिया था, वहां एक कम हुआ था, यहाँ एक बढ़ा दिया, तो सातवें नंबर पर उपयोग दोनों जगह है। उपयोग यह सातवां अर्थाधिकार है क्योंकि उपजोगे च इस पद के आगे सात का अंक पाया जाता है। चौठाणे च आठ, चतुस्थान नाम का आठवां अर्थाधिकार है आठ, वहां भी हमने आठवें का नाम चतुस्थान देखा था। चतुस्थान यह आठवां अर्थाधिकार है क्योंकि चौठाणे च इस सूत्र के आगे आठ का अंक पाया जाता है आठ। व्यंजने च नौ, व्यंजन नाम का नौवां अर्थाधिकार है नौ, व्यंजन यह नौवां अर्थाधिकार है क्योंकि व्यंजने च इस चूर्णी सूत्र के आगे यति वृषव आचार्य के द्वारा स्थापित नौ का अंक पाया जाता है। ये यति वृषव आचार्य की और कोई आपको रचना मालूम है, ग्रंथ कोई दूसरा लिखा हुआ, उनका तो हमने तो नहीं पढ़ा है, ये न्याय दीपिका उन्हीं की है, न्याय शास्त्र लिखा है ना, आपके पास होगी ना, ये वीर सागर महाराज ने उसके ऊपर टीका लिखी थी ना, यानी उसके टीका का उन्होंने भाषांतर अनुवाद वगैरह किया था। ये नौ आगे का सूत्र, सम्मतेति दंशन मोहनीय सवसामना च दस, दंशन मोहनीय खवना च ग्यारह। गाथा सूत्र में आए हुए सम्मत्ते इस पद से दर्शन मुंह की उपशामना नाम का दसवां अर्थाधिकार लिया गया है दस, और दर्शन मुंह की क्षपणा नाम का ग्यारहवां अर्थाधिकार लिया गया है ग्यारह। चूर्णी सूत्र में स्थित सम्मत्ते यह पद स्वरूपवाची है, स्वरूपवाची, वाची ने बताने वाला, अर्थात आत्मा के सम्यक्त्व नामक धर्म का वाची है। और गाथा सूत्र में स्थित सम्यक्त्व शब्द का अनुकरण मात्र है। यह कैसे जाना जाता है? समाधान, उसके अंत में स्थित इति शब्द से जाना जाता है कि चूर्णी सूत्र में स्थित स्वरूपवाची सम्यक्त्व पद गाथा सूत्र में स्थित सम्यक्त्व शब्द का अनुकरण मात्र है। यहाँ तो स्वरूपवाची सम्यक्त्व पद लिखा और वहां तो केवल सम्यक्त्व लिखा था, उसमें से ही इन्होंने ये अर्थ निकाला, इसको कहते हैं अनुकरण मात्र है। दर्शन मुनि की उपशामना और दर्शन मुनि की क्षपना ये कारण है, सम्यक तो उनका कार्य है। कैसा कारण है? निमित्त के उपादान है। दर्शन मोह की उपशामना और दर्शन मोह की क्षपना ये कौन से कार्य है? कर्मों में हो रहे। हाँ, और जीव में क्या है? सम्यक तो कार्य बताए ना, तो ये सम्यक तो कार्य जीव में हुआ है, और दर्शन मोह में क्या हुआ? उपशामना, यक्ष है, ये तो निमित्त कारण के। अतः यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके, कारण में कार्य का उपचार किया है। सम्यक तो शब्द से दर्शन मुनि की क्षपणा और दर्शन मुह की उपशामना रूप क्रिया का ग्रहण करना चाहिए। इस सम्यक तो शब्द में से ये दो अर्थ निकाले उन्होंने, उनमें से दर्शन मुनि की उपशामना नाम का दसवां अर्थाधिकार है। यह कैसे जाना जाता है? यति ऋषभ आचार्य ने दंशन मुनि से उपशामना च इस पद के आगे 10 का अंक स्थापित किया है। इससे जाना जाता है कि दर्शन मुह की उपशामना नाम का 10वां अर्थाधिकार है, दर्शन मुह की क्षपणा नाम का 11वां अर्थाधिकार है। यह कैसे जाना जाता है? फिर उसका समाधान, यति ऋषभ आचार्य ने दंशन मुनि से खवणा च इसके आगे 11 का अंक रखा है। इससे जाना जाता है कि दर्शन मुह की क्षपणा 11वां अर्थाधिकार है। 11 लिखा है लास्ट में। देश विरदी च 12, देश विरति नाम का 12वां अर्थाधिकार है। 12 देश विरति, यह 12वां अर्थाधिकार है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? इसका समाधान, यति ऋषभ आचार्य ने देश विरदी च इस पद के अंत में 12 का अंक स्थापित किया है। इससे जाना जाता है कि देश विरति नाम का 12वां अर्थाधिकार है। आगे का सूत्र, संयमे उपशामना च खवणा च चरित्त मोहनीयस्य उपशामना च 13, खवणा च 14। देखो यहाँ अकेला देश विरति को लिया, मूल में क्या लिया था? संयम कहो या चारित्र लब्धि कही थी ना, और बाद में 14 और 15 नंबर को इसको चारित्रमों की उपशामना और क्षपणा को रखा था। यहाँ अलग से क्लासिफिकेशन है, यहाँ अकेले देश विरति को रखा है और फिर ये उपशामना और क्षपणा को रखेंगे। यहाँ लिखा ना, देखो, संयम विषय उपशामना और क्षपणा अर्थात चारित्रमों की उपशामना, यह 13वां अर्थाधिकार है, और उसी की क्षपणा यह 14वां अर्थाधिकार है। उसका भी जयदहुला की टीका, संयम में इस पद में विषयार्थक सप्तमी विभक्ति है, विषय को बताने वाली है। सप्तमी में ऐसे डाला जाता है ना, तो सम्यक्त्वे संयम में, इसलिए संयम में इसका अर्थ संयम के विषय में इस प्रकार लेना चाहिए। यद्यपि सूत्र में उपशामना और क्षपणा यह सामान्य रूप से कहा गया है, तो भी चारित्र मुनि की उपशामना और चारित्र मुनि की क्षपणा इस प्रकार संबंध कर लेना चाहिए। वहां तो चारित्र मुनि ऐसा नाम तो नहीं लिखा है, अभी जो ये चूर्णी सूत्र के सूत्र में, फिर भी वो समझना चाहिए, क्योंकि संयम के विषय में चारित्र मुनि की उपशामना और क्षपणा को छोड़कर और दूसरे की उपशामना और क्षपणा संभव नहीं है। अन्य की उपशामना क्षपणा का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि संयम में तो उसी से संबंध है। अतः चारित्र मुह की उपशामना नाम का 13वां अर्थाधिकार है, क्योंकि यदि इसे 13वां अर्थाधिकार न माना जावे तो चारित्र मुनि से उपशामना च इस पद के अंत में 13 के अंक की स्थापना नहीं बन सकती है। यानी स्वयं उन्होंने 13 लिखा है चूर्णी सूत्रकार ने, तथा चारित्र मुह की क्षपणा नाम का 14वां अर्थाधिकार है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? तो खवणाच इस पद के अंत में 14 का अंक पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि चारित्र मुह की क्षपणा नाम का 14वां अर्थाधिकार है। ये 14 फिर चूर्णी सूत्र दंशन चरित मोहित पद परिवूरणम। गाथा सूत्र में दंशन चरित मोह यह पद पाद की पूर्ति के लिए दिया गया है। पद परिवूरणम शंका। दंशन चरित मोहे गाथा सूत्र के इस अवयव को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस पद को दिए बिना भी उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है। दर्शन मोह और चारित्र मोह के विषय में अद्धा परिमाण का निर्देश करना चाहिए, इसका ज्ञान कराने के लिए दंशन चरित मोहे यह पद दिया गया है। सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कषाय प्रावृत में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को छोड़कर दूसरे कर्मों की प्ररूपणा नहीं की होने के कारण क्या कहते हैं, ये जो अद्धा परिमाण है वो तो इसी कर्म के बारे में है, क्योंकि यहाँ ज्ञानावरणादि की कोई चर्चा ही नहीं है, इसका विषय ही दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, तो अद्धा परिमाण किसका है, तो दर्शन और चारित्र मोहनी का है, ये कहने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा यहाँ बताते हैं। होने के कारण अद्धा परिमाण का निर्देश यानी उस संबंधी जो कोई प्रमाण आदि जो बताएंगे कि उसका काल बताएंगे, उसका जो निर्देश है कथन है वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के विषय में ही किया गया है, यह बिना कहे ही सिद्ध हो जाता है, उसको कहने की क्या जरूरत थी, ऐसा प्रश्न है। यदि कहा जाए कि पेज्य दोष विभक्ति आदि अतीत अधिकारों के साथ दंशन चरित मोह इस पद का संबंध होता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर भी यही प्रकार पाया जाता है। अर्थात अद्धा परिमाण निर्देश के समान वे सब अधिकार भी दर्शन मुनि और चारित्र मुनि के विषय में है, यह बिना कहे ही सिद्ध हो जाता है। अतः गाथा सूत्र में दंशन चरित मोह यह पद नहीं कहना चाहिए, यह निश्चित होता है, इतनी बड़ी तो शंका है, उसका समाधान छोटा है। यह शंका में जो कुछ कहा गया है वह सत्य है, क्योंकि बात तो ऐसी ही है, किंतु दंशन चरित मोह यह पद पाद की पूर्ति के लिए दिया गया है, इसलिए कोई दोष नहीं है। पद की पूर्ति के पाद की पूर्ति, अच्छा पद पाद। शंका। पद की पूर्ति किसे कहते हैं? गाथा के अधूरे उत्तरार्ध की पद के द्वारा पूर्ति करने को पद पूर्ति कहते हैं। गाथा पूरी करने के लिए वहां वो पूरा किया गया है गाथा के द्वारा, इसलिए उसको पद पूर्ति। फिर सूत्र अद्धा परिमाण निर्देशोत्ति 15। अद्धा परिमाण निर्देश नाम का 15वां अर्थाधिकार है। देखो यहाँ इसको 15 नंबर दिया, और पहले इसको किसी नंबर में नहीं गिनाया था। अद्धा परिमाण निर्देश 15वां अर्थाधिकार है, वो प करना श दिख रहा है। यह कैसे जाना जाता है अद्धा परिमाण? यह प्रश्न चिन्ह चाहिए, शंकाकार की जो शंका है ना उसके आगे अद्धा परिमाण निर्देशोक्ति इस पद के अंत में 15 का अंक पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि अद्धा परिमाण निर्देश नाम का 15वां अर्थाधिकार है। 15 एसो अथाहियारो पन्नारस विहो। इस प्रकार यह अर्थाधिकार 15 प्रकार का है। ये उसके 15 क्या क्या कैसे डिवीजन क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है उसको यहाँ विस्तार से बताया। इस प्रकार इन 15 प्रकार के अर्थाधिकारों का यति ऋषभ आचार्य ने उपदेश दिया है, तथा इन्हीं अर्थाधिकारों का आश्रय लेकर वे चूर्णी सूत्र भी कहेंगे, यानी उनका जो कथन होगा इस प्रकार से जो उन्होंने उसका जो डिवीजन किया है उसके जो भेद किए हैं उसी अपेक्षा से उनका कथन होगा चूर्णी सूत्र में। अथवा पेज्य दोष यह पहला अर्थाधिकार है 1, प्रकृति विभक्ति यह दूसरा अर्थाधिकार है 2, अथवा कहकर अभी स्वयं वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं। स्थिति विभक्ति नाम का तीसरा अर्थाधिकार है 3, अनुभाग विभक्ति नाम का चौथा अर्थाधिकार है 4, प्रदेश विभक्ति जीना जीन प्रदेश और सित्यंतिक प्रदेश मिलाकर, प्रदेश विभक्ति के बाद कौमा और सित्यंतिक में थोड़ा गैप, इनको मिलकर 5वां अर्थाधिकार है 5, बंधक नाम का 6ठा अर्थाधिकार है 6, वेदक नाम का 7वां अर्थाधिकार है 7, उपयोग नाम का 8वां अर्थाधिकार है 8, चतुष्ठान नाम का 9वां अर्थाधिकार है 9, व्यंजन नाम का 10वां अर्थाधिकार है 10, सम्यक्त्व नाम का 11वां अर्थाधिकार है 11, देश विरति नाम का 12वां अर्थाधिकार है 12, संयम नाम का 13वां अर्थाधिकार है 13, चारित्रमुखी उपशामना नाम का 14वां अर्थाधिकार है 14, और चारित्रमुखी क्षपना नाम का 15वां अर्थाधिकार है 15। ये सम्यक्त्व नाम का 11वां अर्थाधिकार लिया ना, उसी में दर्शनमुखी उपशामना और क्षपना का वर्णन। गाथा सूत्र में दंशन चरितमोह ऐसा कहने पर पहले कहे गए समस्त 15 ही अर्थाधिकार दर्शनमोह और चरित्रमोह के विषय में है ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। जिसको कहते ना अंत्य दीपक, उस रूप से वो शब्द डाले हैं। अद्धा परिमाण निर्देश स्वतंत्र अर्थाधिकार नहीं है, जो अभी ऊपर चुन्नी सूत्रकार ने उसको स्वतंत्र रूप से बताया, क्योंकि वह समस्त अर्थाधिकारों में अनुगत है। अनुगत यानी उसकी कंटिन्यूटी है, वहां पर वो गर्भित है। इस प्रकार तीसरे प्रकार से 15 अर्थाधिकारों की प्ररूपना की। पहले तो स्वयं यति वृषभ आचार्य गुणधर भट्टारक ने बताया था, फिर यति वृषभ आचार्य ने भी बताया, और यहाँ चूर्णी अपने उसके ऊपर जो टीका है जय धौलाकार वीरसेन स्वामी वो भी बता रहे। तो अथवा कहकर ये तीसरी पद्धति बताई। इसी प्रकार चतुर्थ पंचमादि प्रकारों से 15 अर्थाधिकारों का विचार करके कथन कर लेना चाहिए। अब ऐसा लगता है ना, अभी विषय को भी चालू कर दो ना। विशेषार्थ यानी हमारी जिज्ञासा और बढ़ रही है। हाँ, इसमें पेज दोष विहत्ति वाला ये पहला प्रथम अधिकार लिखा ना हमने, पृष्ठ पढ़ा था। विशेषत पेज 200 इत्यादि दो गाथाओं द्वारा इस कषाय प्रावृत में कहे गए 15 अर्थाधिकारों का निर्देश किया गया है। ये 13वीं-14वीं गाथा थी ना इसमें कषाय प्रावृत की, और इस समूचे कषाय प्रावृत में कितनी गाथाएं आई है तथा उनमें से कितनी गाथाएं किस अधिकार में है, इसकी सूचना इन दो गाथाओं की वृत्ति रूप से कही गई गाहा सदे असीदे इत्यादि गाथाओं द्वारा दी गई है। वहाँ लिखा है कि कषाय प्रावृत के समस्त अधिकारों का 180 गाथाओं में वर्णन किया गया है, और प्रारंभ के 5 अधिकारों में 3 गाथाएं, वेदक नामक 6ठे अधिकार में 4 गाथाएं, उपयोग नामक 7वें अधिकार में 7 गाथाएं, चतुस्थान नामक 8वें अधिकार में 16 गाथाएं, व्यंजन नामक 9वें अधिकार में 5 गाथाएं। इतना फास्ट पढ़ू ना कि स्लोली चाहिए, ये विषय बहुत बार आया है। दर्शन मोह की उपशामना नामक 10वें अधिकार में 15 गाथाएं, दर्शन मोह की क्षपना नामक 11वें अधिकार में 5 गाथाएं, संयमा संयम लब्धि नामक 12वें और चारित्र लब्धि नामक 13वें, इस प्रकार इन दो अधिकारों में एक गाथा, एक ही गाथा में ये दो ही अधिकार निकले हैं। उपशामना नामक 14वें अधिकार में, ये कौन सी उपशामना है, चारित्र मोह की, 8 गाथाएं, और क्षपना नामक 15वें अधिकार में 28 गाथाएं आई है। इस कथन से गुणधर भट्टारक को इष्ट प्रारंभ के 5 अधिकारों के नामों को छोड़कर, गुणधर भट्टारक को इष्ट यानी उनके उनके कथन के अनुसार उन्होंने जो विभाजन किया है तो उनके लिए जो इष्ट है, ऐसा इष्ट यानी वो इष्ट अनिष्ट वाला इष्ट नहीं है, उन्हें जो अभिप्रेत है वो जो कहना चाहते हैं उसको भी इष्ट कहते हैं, मराठी में उसको अभिप्रेत कहते हैं, यानी उनके अभिप्राय के अनुसार इष्ट है ने उनका जो अभिप्राय है। प्रारंभ के 5 अर्थाधिकारों के नामों को छोड़कर शेष 10 अधिकारों के नाम भी प्रकट हो जाते हैं। केवल प्रारंभ के 5 अधिकारों के नामों की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है, क्यों तो उसमें तो 4 लिखे हैं और एक च शब्द डाल दिया था उन्होंने। गुणधर भट्टारक ने प्रारंभ के 5 अधिकारों के नामों के संबंध में पेज 272 ठिदी अनुभागेय बंदगे चेय केवल इतना ही कहा है, यानी उसमें से ही 5 नाम निकलते हैं। और वो च शब्द से हमने बहुत सारी बातें अभी तक चर्चा भी देखी। इस गाथांश से, यानी गाथा की इस पहली लाइन से, पेज दोष विभक्ति, स्थिति अनुभाग और बंधक, इस प्रकार केवल 4 नामों का संकेत मात्र मिलता है, पर यह नहीं मालूम पड़ता है कि प्रारंभ के 5 अधिकारों में से कौन अधिकार किस नाम वाला है। यही कारण है कि प्रारंभ के 5 अधिकारों की चर्चा करते हुए वीरसेन स्वामी ने 2-3 विकल्प सुझाए हैं, जिनकी चर्चा पहले की ही जा चुकी है। पर इतना स्पष्ट है कि गुणधर भट्टारक ने पेज दोष विहत्ति इत्यादि गाथा के पूर्वार्ध द्वारा, यानी पहली लाइन, प्रारंभ के 5 अधिकारों की सूचना दी है, जिसकी पुष्टि तिन्नेदा गाहाओ पंचसु अथेसु नादौवा इस गाथांश से होती है, यानी 3 गाथाओं के द्वारा वो 5 अधिकार बताए हैं। पेज दोष विहत्ति इत्यादि जिन 2 गाथाओं में, जो हमने 13 और 14 नंबर, पहले 12 तो संबंध गाथा है और 13वें 14वें में नाम बताए हैं, इन 2 गाथाओं में 15 अधिकारों के नाम गिनाए हैं, उनमें अंतिम पद अद्धा परिमाण निर्देशो य होने से 15वां अर्थाधिकार अद्धा परिमाण निर्देश नाम का होना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। पर जिन 180 गाथाओं में 15 अर्थाधिकारों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, उनमें अद्धा परिमाण निर्देश का वर्णन करने वाली 6 गाथाएं नहीं आई है, यानी वो 180 में उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको गर्भित नहीं किया है। तथा 15 अधिकारों में गाथाओं का विभाग करते हुए गुणधर भट्टारक ने स्वयं इस प्रकार की सूचना भी नहीं की है। इससे प्रतीत होता है कि स्वयं गुणधर भट्टारक को 15वां अधिकार अद्धा परिमाण निर्देश इष्ट नहीं था, यानी 15वां का नाम अद्धा परिमाण नहीं था। अद्धा परिमाण तो जो संबंधी जो प्रमाण है, वो तो सभी अर्थाधिकारों में अपना अपना उनका प्रमाण बताने वाले। इस प्रकार पूर्वोक्त 15 अधिकार गुणधर भट्टारक के अभिप्राय अनुसार समझना चाहिए, पर यति ऋषभ आचार्य इन 15 अधिकारों के नामों में परिवर्तन करके अन्य प्रकार से 15 अधिकार बतलाते हैं, यानी कहां कौन सा अर्थाधिकार है कौन सी गाथा में, इतना ही उन्होंने परिवर्तन किया है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 15 अधिकारों का नाम निर्देश करते समय पेज दोष विहत्ति इत्यादि जिन 2 गाथाओं में, ये विहत्ति यहाँ दूसरा कैसा है, सब जगह विहत्ति दीर्घ लिखा, ये शायद प्राकृत में उनकी प्राकृत में दूसरी ती आई होगी, प्राकृत में विहत्ति में नहीं नहीं प्राकृत में विहत्ति दीर्घ ही है सब जगह, और हिंदी में उन्होंने विभक्ति पहला लिया, बराबर है, क्योंकि उन्होंने वो इन्वर्टेड में रखा है ना, प्राकृत शब्द है, क्या कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 15 अधिकारों का नाम निर्देश करते समय पेज दोष विहत्ति इत्यादि जिन 2 गाथाओं में 15 अधिकारों के नामों की सूचना दी है, उन 2 गाथाओं का यति ऋषभ स्थविर ने आचार्य मुनिराज अनुसरण तो किया, पर जिन संबंध गाथाओं द्वारा किस अधिकार में कितनी गाथाएं आई है यह बताया है, उनका अनुसरण नहीं किया, यानी उन्होंने उसमें से अलग उसका विभाजन किया। गुणधर भट्टारक ने पूज्य दोष विहत्ति इत्यादि गाथा के पूर्वार्ध द्वारा 5 अधिकारों की सूचना की है। अभी हमने देखे ना, 4 नाम बताए परंतु 5 अधिकार है ऐसा बताया था। यति ऋषभ आचार्य उक्त गाथा के शब्दों का अनुसरण करते हुए उसके पूर्वार्ध से यदि पांच ही अधिकार कहते तो वह गुणधर भट्टारक का ही अभिप्राय समझा जाता। पर उक्त गाथा में जो पांच अधिकारों की सूचना है उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया है। वे गाथा के पूर्वार्ध के शब्दों का अनुसरण तो करते हैं पर उसके द्वारा केवल चार अधिकारों के निर्देश की सूचना करते हैं। उसमें भी उन्होंने चार ही अधिकार निकाले और इस प्रकार अधिकारों के नाम निर्देश के संबंध में यति ऋषभ स्थविर का अभिप्राय गुणधर भट्टारक के अभिप्राय से भिन्न हो जाता है। ऊपर लिखा ना क्या इष्ट था इन्हें, उनका अभिप्राय क्या था। गुणधर भट्टारक जहां, अभी यहां से हम बाद में कल पढ़ेंगे, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सब पूरा विशेषार्थ विशेषार्थ लिखा है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो लो। प्रेरणा।